श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 49 दिनांक 10 अप्रैल 2015 स्पीकर कुमदास प्रभु।
भैरवी बंधन से मुक्त हो जाने पर अभीष्ट प्राप्त किया। वर्षा ऋतु में व्यापारी वर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा नहीं कर सकता, अतः उसे वांछित लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। न ही राजन्य वर्ग एक स्थान से दूसरा स्थान यात्रा करके जनता से कर वसूल कर सकता है। वहाँ तक कि साधुगण भी जिन्हें दिव्य ज्ञान के प्रचार हेतु यात्रा करनी होती है, वर्षा ऋतु के कारण रुके रहते हैं, किंतु शरद ऋतु में वह सभी अपने अपने आवास छोड़ देते हैं। आध्यात्मवादी चाहे वो ज्ञानी हो या योगी अथवा भक्त, भौतिक शरीर होने से आध्यात्मिक लाभ का वास्तव में भोग नहीं कर सक पाता, किंतु जो ही वह शरीर त्याग देता है अर्थात मरणोपरांत ज्ञानी ब्रह्म तेज में लीन हो जाता है, योगी उच्च लोक में चला जाता है और भक्त भगवान के निज धाम गोलोक वृंदावन या वैकुंठ चला जाता है। और इस तरह नित्य आध्यात्मिक जीवन का भोग करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत वृंदावन में वर्षा तथा शरद ऋतु के शीर्षक विषय अध्याय का श्री प्रभुपाद की विनीत सेवक के द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हो गया। आज जो वर्णन है सिद्ध स्वरूप प्राप्त, सिद्ध दशा हमारा तो हुआ नहीं है, और ये सब चीज जो वर्णन किया गया है, जो सिद्धि प्राप्त किया हुआ आचार्यों के द्वारा, उसी का वर्णन मैं आप लोग को सुनाऊंगा। यद्यपि सबके लिए नहीं है, क्योंकि अधिकार अनुजाई इनको श्रवण करना चाहिए, बा यज्ञ पात्र देश काल व्यक्ति इसका बोलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है जे रास्ता में कहाँ भी खड़ा होके ये सब दशा का वर्णन किया जाए। फिर भी चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जो कावा होता है वो कूड़ेदान में रहते हैं, और जो कोकिल होता है वो आम का झाड़ में रहता है। तो भक्त रूप जो कोकिल है वो इसको अगर आस्वादन करता है तो उनका जीवन का कल्याण हो जाता है, नहीं तो अगर श्रवण भी करता है, श्रवण के द्वारा जो लोभ होता है उसमें भी उस व्यक्ति विशेष में अगर इच्छा का जागृत हो तो उस वस्तु का प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर सकता है। जैसे बड़ा बड़ा होटल क्यों जाओ, गोविंदा में अगर जाओगे बाहर तो प्रसाद मिलता है, लेकिन गोविंदा के अंदर कुछ हाई फाई प्रसाद मिलता है। वो खाने के लिए लोभ करने के बावजूद भी जेब देखना पड़ता है, अगर जेब में नहीं है तो बाहर से घूम के निकल जाना पड़ता है। उसी प्रकार ये जो भक्तांग है, इस भक्तांग का अगर श्रवण करेंगे और श्रवण करने के बाद अगर इसका आचरण करते हैं तो हमारा ये सब वस्तु करतलगत होता है। चैतन्य चरित में कहा गया है, जहार कोमल शब्द से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तिह भक्त हईवे उत्तम। जो कोमल शब्द है मतलब श्रद्धा का, श्रद्धा दो प्रकार का होता है, शास्त्रीय श्रद्धा एक लौकिक श्रद्धा। तो लौकिक श्रद्धा कुछ काम का नहीं है, शास्त्रीय श्रद्धा को श्रद्धा शब्द में भक्ति शास्त्र में कहा गया है। तो जिनका श्रद्धा थोड़ा बहुत है वो भी अगर उपयुक्त साधुओं का संग करता है तो भी शुद्ध भक्त बन सकता है, नहीं तो आधा रास्ता में भी छिटक के दूसरा जाएगा जा सकता है, ऐसा नहीं जो बन सकता है। और शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धाजार मध्यम अधिकारित है महाभाग्यवान, शास्त्र नहीं जानता है, इस श्रद्धा उनका दृढ़ है, वो व्यक्ति भाग्यवान है उसको कहा गया है। और शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धाजार उत्तम अधिकारित हो तरय संसार, जो शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता है, भगवान में भी दृढ़ श्रद्धा है, वही संसार से छुटकारा पा सकता है। ऐसे बहुत सारे कोटेशन है, शिष्य में मिलेगा आपको, उपदेश समृद्ध मिलेगा, अलग अलग बहुत सारे कोटेशन है, चैतन्य भागवत में मिलेगा जो भी है। तो ये जो यहाँ कहा गया है, जब तक योगी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, भौतिक शरीर जब तक है तब तक आध्यात्मिक सुख का उतना आनंद उठा नहीं पाता है जितना उसको पाना चाहिए, यहाँ जो लिखा गया है। और जब ज्ञानी अपना देह त्याग करता है ब्रह्मलोक जाता है, योगी अपना देह त्याग करता है तो अपना उच्चतर लोक जाता है, भक्त अगर देह त्याग करता है तो वैकुंठ जा गोलोक वृंदावन जाता है, ये तात्पर्य में कहा गया है। तभी ये जो लोग जाने का जो विधि है, तो ये जो सिद्ध, तो हमारा कर्तव्य जो हम हरिनाम कर रहे हैं, वृथा समय हमें गवाना नहीं चाहिए। सुदुर्लभम जो मनुष्य देह है, ये निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवं कल्पं गुरुकल्पधारं मया सभेरितं मया नभेश्रितं अनुकूल्यवाव जतरेत्स्व आत्महा। ये जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त होने के नाते हमारा एक विशेष योग्यता है भगवान का गुणगान करना। दूसरा जितना सारे दुनिया है उसमें से हम भगवान का गुणगान नहीं कर सकते हैं। एवं सुंदर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद अगर इस संसार में गुरु भी मिल जाए, जय श्री श्री गुरु गौरांग भगवंतार, मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर गुरु नहीं मिलता है तो संसार को उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। मनुष्य शरीर नाव का स्वरूप है, अगर नाव आपको मिल जाए तो अगर बोलोगे नाव में बैठ के हम नदी व समुद्र पार हो जाएंगे, संभव नहीं, कि इसको चलाने के लिए एक अच्छी सी नाविक का जरूरी होता है। तो नाविक का गुरु कर्ण धारम, नाविक का काम करता है गुरु। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद अगर गुरु स्वीकार नहीं करते हैं तो संसार उत्तीर्ण नहीं हुआ जा सकता है। गुरु भी मिला नाव भी मिला तो क्या हम तैर के पार हो सकते हैं? ये भी असंभव है, क्योंकि अगर बीच में साइक्लोन आ गया, टॉर्नेडो आ गया, तो हमारा नौका को तोड़ मरोड़ के वहाँ अंदर घुसार देगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अनुकूल हवा की भी जरूरी है। मया अनुकूलेन नभे सतेरितं, हमारा अनुकूल दिन, मया अनुकूल मतलब कृष्ण कथा अनुकूलन कृष्णानुशलनम सेवन भक्तिर उत्तम। तो हमारा अनुकूल मतलब कृष्ण कथा अनुकूल हवा, अगर हम कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करते हैं तो इस अनुकूल हवा के द्वारा नाव सटीक तरीके से जाएगा। और इतना सारे सब चीज उपस्थित होने का बावजूद भी जो व्यक्ति इसका लाभ नहीं होता उठाता है उसको आत्मघाती कहते हैं, स्व आत्मा, वो अपने आप को काटता है, गोला काट देता है, बस ये शास्त्र वाक्य है। तो ये सब मिलने के बाद व्यक्ति क्या करते हैं, जे श्रवण दशा से लेकर के संपत्ति दशा तक पांच दशा होता है, दशा मतलब स्टेज, पांच स्टेज होता है। एक स्टेज होता है श्रवण दशा, श्रवण एक क्रमहीन श्रवण होता है और एक क्रम शुद्ध श्रवण होता है। क्रमहीन यहाँ वहाँ श्रवण करके जो किया, कृष्ण लीला का क्रमभाव में श्रवण करना उसको क्रमयुक्त श्रवण कहते हैं, और यहाँ हुआ श्रवण करना उसे क्रमहीन श्रवण कहते हैं। दूसरा वरण दशा, तीसरा शरण दशा। और शरण दशा का दो भाव है, शरण का क्रम और भाव का सहित नाम का स्मरण। उसके बाद आर एक है उपास्य निष्ठ, और चौथा है भावापन दशा। इस भावापन दशा का नाम है स्वरूप सिद्ध अवस्था। और पंचम नंबर है संपत्ति दशा, इनका नाम है वस्तु सिद्धि। तो श्रवण, वरण, स्मरण, भावापन, संपत्ति, ये पांच दशा है। तो इस दशा का वर्णन जब व्यक्ति का कृष्ण कथा में श्रद्धा उत्पन्न होता है और उस श्रद्धा के द्वारा जो बहिर्मुख दशा नष्ट हो जाता है, हमारा भी दशा क्या है, बहिर्मुख दशा है। किस प्रकार हम भगवान का सामने खड़ा होकर भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन इतने बाजू आजू बाजू में कोई अगर कुछ दिखाई दिया तो हम उनको ना देख करके उनको देखेंगे। तो हमारा जो श्रवण इस दशा है, हमारा बहिर्मुख दशा अभी तक नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इस जगत में ईशो उपनिषद 9 नंबर मंत्र में है शायद, वहाँ पर भजन का क्रम का दिया गया है, साधक का निष्ठा। अगर समस्त जगत भगवान में स्थित है और पूर्व भगवान समस्त जीव में भगवान विराजित है और भगवान में समस्त जीव विराजित है, ये जब हमारा बुद्धि हो जाएगा तो हमारा शोक और मोह का कोई कारण नहीं है। भगवान को छोड़ के कोई वस्तु है नहीं है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, और भगवान को अलग करके कोई वस्तु टिक भी नहीं सकता है। और जितना सारे हम देख रहे हैं ये सब वस्तु भगवान में निवास है। तो जब साधक का ये इस बुद्धि प्राप्त करेगा उसको कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेशु भूतेषु, ये जो सम सर्वेशु भूतेषु ये हमारा हुआ नहीं, क्योंकि हमारा भोग दृष्टि बा देश दृष्टि बा इतर दृष्टि हमें विराजित है। तो जब तक शास्त्र श्रवण करते करते बहिर्मुख दशा का उपनोदन होता है तब कृष्ण कथा सुनने के लिए लालसा होगा, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले सुनेगा वो क्रम सुनना नहीं होगा, अपना सुनते जाना चाहिए एक टाइम टेबल, जैसे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ये जाना है, इस प्रकार है। तो अपना से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर हो उससे कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 4:29 श्लोक में कहते हैं तस्मिन् महान मुखरिता मधुविचरित्र पीयूष शेष सरित परित श्रवंती ताजे पिबंत विदुष निपगार कर्णेर स्थान अवृष्यंता नतिड़ भय शोक महा। अर्थ हे राजन, महत व्यक्ति का मुखारविंद से कृष्ण चरित का अमृत रूपी नदी का बहते रहते हैं। जो व्यक्ति एकांत चित्त में उस कथा को कर्णामृतों में वितृष्णा शून्य होकर के पान करता है उनका खुदा अर्थात जो भूख लगता है भय शोक मोह कभी भी उसको परसा नहीं करता है। तो बहिर्मुख व्यक्ति कब कृष्ण कथा का श्रवण करेगा, जो बहिर्मुख व्यक्ति होता है वो कृष्ण कथा का श्रवण कब करेगा। बहिर्मुख अवस्था में कृष्ण कथा का श्रवण, अंतर्मुख अवस्था में कृष्ण कथा का श्रवण में अंतर है। जैसे प्रद्युम्न मिश्र राय रामानंद से कृष्ण कथा सुनने गया, राय रामानंद कृष्ण कथा बोलने लगा, प्रद्युम्न मिश्र श्रवण करने लगा, कब शाम हुआ किसी को दोनों में से पता नहीं चला। को दोनों अनर्थ निर्मुक्त व्यक्ति है, हमारा वो श्रवण होगा 9 से 9:30 बज जाएगा तो हमें परेशानी होता है, हम बहुत कुछ बोलने लगता है, शास्त्र उदाहरण देने लगता है, भाई इतना टाइम किसी को बैठा कर नहीं रखना चाहिए, हम इतना ये नहीं है ये नहीं है, क्या आ गया पूरा भक्ति का रस पिला दिया, कितना बड़ा भक्त है, दुनिया भर का विचार करके क्रिटिसाइज भी करते हैं, सब कुछ करने लगता है, क्योंकि हम न तो पद्मन मिश्र है और न ही राय रामानंद है, हमारा निविथ अनर्थ है ही नहीं है। तो निविथ अनर्थ जब नहीं है तब हमें क्या करना चाहिए, साधनांग का परिपालन करना चाहिए, न कि साधनांग का ऊपर जाना चाहिए। 45 मिनट्स अगर इससे ज्यादा कुछ करेगा तो लोग हमारा क्रिटिसाइज करें, बिराट बड़ा भक्त है, आचरण देखो ना क्या आचरण है, बड़ा कृष्ण कथा बोलने लग गया, ज्ञान दिखा रहा है, तो लोग निंदा करेगा, तो लोग निंदा अगर करेगा तो लोगों का सब पतन होगा, तो उसका निंदा का कारण बन जाते हैं। जो व्यक्ति सुनता है उसको भी भूख लगता है, अगर सुनते सुनते उसका भी चित्त का उत्पादन हो गया तो क्या होगा, श्रवण में मनोयोग नहीं होगा तो कृष्ण कथा सुनना भी उसका गलत हो जाता है। तो निविता अनर्थ व्यक्ति अगर दोनों हो जाए, भागवत कथा साध रोसिकाना गणेश, भागवत कथा का आस्वादन रोसिक भक्त का संग में करना चाहिए, न कि इतर व्यक्ति का साथ करना चाहिए। ये भक्तों सिंधु का श्लोक, हमारा श्लोक नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो नियम है साधनांग, उस साधनांग में रह करके निवित अनर्थ जब तक नहीं होता है तब तक हमें श्रद्धा जहाँ तक स्थिर रहे तब तक ही श्रवण और कीर्तन का करना हमारे लिए बेहतर होगा। न हम अपराध करेंगे, न हम अपराध करने के लिए किसी को प्रयोजित करेंगे। तो बहिर्मुख व्यक्ति का कृष्ण कथा श्रवण कोई घटना में होता है, श्रद्धायुक्त तो नहीं होता है, किसी कारणवश आ गया मंदिर में, मंदिर में आके दर्शन करने लग गया, कोई कथा कर चलो 5 मिनट बैठ गया, 5 मिनट कथा सुन के चला गया, ये बहिर्मुख व्यक्ति का कृष्ण कथा का श्रवण है। लेकिन जब अंतर्मुख अवस्था में कृष्ण कथा का श्रवण होगा तब वो क्या करेगा, जहां पर कृष्ण कथा होता है नित्य उस जगह में जाकर के कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करेगा। तो ये जो श्रवण और कीर्तन का है, श्रवण दशा है, इसको स्थाई और अस्थाई बा श्रद्धायुक्त और घटनाक्रम, ये दो प्रकार का है। तो इस श्रवण दशा के द्वारा जब भगवान का नित्य लीला का श्रवण करेंगे तब क्रमशुद्ध श्रवण दशा का, श्रीमद् भागवतम अपना दशम स्कंद का पहला से लेकर के 90 चैप्टर 1 से लेकर 90 अध्याय तक जो स्थिर चित्त से श्रवण करेंगे, अगर श्रवण करने का नहीं है तो अपना रूम में बैठ के पढ़ाई करेंगे, अभी श्रवण ही होता है, शास्त्र है नहीं हो रहा है, यहाँ पर रोज 1 श्लोक होता है, ये 1 श्लोक होते होते कब कौन मरेगा कोई ठिकाना नहीं है, गारंटी नहीं कब कौन इसको मृत्यु हो जाएगा, पूरा कोई सुन भी पाएगा कोई पूरा नहीं सुन पाएगा, लेकिन बुक अवेलेबल है। और इसको ने ऐसा कोई भाषा नहीं जो भागवत में सुनने में आ रहा है, ये सब भाषा में प्राय अनुवाद कर दिया है प्राय, तो उनका काम है वो बुक उठा के ले जाए और घर में रात को नहीं दिन को नहीं एनी टाइम 2-4 घंटा बैठ के पढ़े, तो अगर चाहे तो 3-4-6 महीने के अंदर दशम स्कंद हो जाएगा, अगर चाहे तो उस प्रकार टारगेट रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है चलो भाई क्या करें, नहीं, सब चीज़ों में निष्ठा होना अति आवश्यक है, हमें ये करना है तो ये करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए तो भी सिद्धि लाभ होता है। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो अच्छी तरीके से करना, नहीं तो बिजनेस मत करो, भक्ति भी करना तो अच्छी तरीके से करो, नहीं तो आगे पीछे भक्ति करने से कुछ नहीं है, आगे पीछे भक्ति करना बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा खींचेगा, भक्ति करना अच्छा से भक्ति करना इस जन्म में निकल जाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस प्रकार भी हमें भक्ति करना आवश्यक होता है। तो ये श्रवण दशा जब श्रवण करेंगे तब क्या होगा, तब रक्तक पत्रक चित्रक सुबल इलोक का जो सख्य भाव है कृष्ण में, किस प्रकार सखागिरी है, तो ये देख के ये जब सुनता है तो वो आ हा कितना सुंदर भगवान से लोग प्रेम करता है, भगवान से कितना अच्छा खेला धुला कर रहा है, कब हमारा नसीब में ऐसा होगा, हम भी ऐसा खेलेंगे, हम भी ऐसा कार्य करेंगे, ये लालसा होगा सुनते सुनते। और बाकी तो अलग अलग जगह में माँ यशोदा का भाई सो अलग हाई लेवल का है। तो इस प्रकार गुरु शिष्य संवाद के द्वारा शिष्य का मन में जो अनर्थ है उस अनर्थ दूरीभूत होकर के वो धीरे धीरे उसमें अग्रसर होगा जितना कृष्ण लीला का श्रवण करेगा। इसलिए प्रभुपाद ने शॉर्ट में कृष्ण बुक लिख दिया। हम जब जुहू में ब्रह्मचारी थे तो हम लोग का काम था मंदिर सफाई करने के बाद ब्रह्मचारी आश्रम में रहने का, उधर सबको बुलाने का, सब बैठते एक बाल्टी दूध गर्म करना किया हुआ रहता था, वो हीटर रहता था इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें बाल्टी बैठा हुआ रहता था। सबको कृष्ण बुक बैठ गया, तुम पढ़ो तुम पढ़ो तुम पढ़ो, जितना लोग था सबको पढ़ाने का, नहीं एक व्यक्ति पढ़ के जाएगा, सबको पढ़ो। सब पढ़ने के बाद सब पढ़ाई हो गया आधा पौने घंटा, फिर एक एक गिलास दूध पियो और जाकर सो जाओ, ये हमारा सिस्टम था एवरी डे। रात को मंदिर सभा हम लोग करते थे जू मंदिर का, इस प्रकार करके हम लोग का नित्य था। अगर किसी के पास टाइम नहीं है ज़्यादा कृष्ण कथा ही करने के लिए तो कृष्ण बुक पढ़ा करें, कोई टेंशन नहीं, आराम से हो जाएगा। तो जब कृष्ण लीला का नित्यत्व का अनुभव होगा तब उनको शुद्ध और अप्राकृत बोल के समझ में आएगा, तब उनमें प्रविष्ट होने के लिए व्याकुल होगा ये कब हम इसका अंदर प्रविष्ट होंगे। तो इस प्रकार जब उनका इच्छा होगा तो गुरु क्या करेगा, साधक शिष्य को 11 प्रकार का जो भाव है उस भाव को समझा देगा और समझने के बाद उसको वरम दशा लाभ हो जाएगा। तो ये जो वरम दशा है वो चित्त में 11 प्रकार का जो राग है वो नहीं वर्णन किया गया है, पीछे है। तो उसमें शिष्य गुरुपाद पद्म में रोते रोते प्रार्थना करता है, ये आप मुझे इस प्रकार सेवा का उपदेश प्रदान कीजिए। तो गुरु क्या होता है, गुरु सखा होता है, गुरु अपना क्या बोलता है, छादन दौड़ी जमुना पुलिन और विशान बेनु, ये भी गुरु ही होता है। और गुरु क्या होता है, नंद यशोदा होता है। और गुरु क्या होता है, राधा रानी होती है। एक ही गुरु अलग अलग शिष्यों के लिए अलग अलग कैटेगरी में अपने आप को प्रकाशित करता है। गुरु एक ही है लेकिन शिष्यों का भाव अनुयायी गुरु अपना स्वरूप को प्रकाशित करता है। तो जिस भाव का जो शिष्य है उस शिष्य गुरु को उस भाव में दर्शन करता है, ये जो परम दशा का ये होता है। उस समय प्रार्थना करता है, प्रेमाम भोज मकरंदाक्य स्तभ में कहा गया है, त्वांग नत्ता जाचते धितातिनं दंते रयं जनहां सदाश मृत सेकेन जीवयामु सुदुखितं नमुंचे छरणातामपि दुष्टं दयामयं अतो राधालिके हाहा मुंचेनं नैव तादृशं। अर्थात हे राधा, हे राधे क्या लिखे, आपका चरण में दंते तीन धारण करके इस अधम आपसे प्रार्थना करता है कि आपका दास्यामृत सेचन पूर्वक इस दुखित व्यक्ति को जीवन दान करो, आप दयामय हो, आपका जो शरण लेता है उसको आप कभी त्याग नहीं करोगे, इसलिए आपका चरणानुग हो करके आप नव युव दंपति को सेवा करने के लिए मैं ललायित तो हूँ। इस प्रकार का दशा का नाम है वरण दशा। अभी ये तो इसलिए बोला ना, ये सब वर्णन योग्य नहीं है, कहाँ रहा राधारा नहीं और कहाँ रहा मैं। अभी भी स्त्री पुरुष का जो संगोदोष है उसके विचार से मुक्त तो नहीं हुआ है, तो राधा दास को कहाँ से प्राप्त करेंगे। राधा रानी एक स्त्री है, उनका सामने अगर आपको जाना है तो स्त्री बन के ही जाना पड़ेगा, न कि पुरुष बन के जाओगे। पुरुष बन के कोई स्त्री के पास जाया जा सकता है, भौतिक जगत में अपना पत्नी छोड़ के दूसरा किसी भी स्त्री के पास पुरुष बन के अगर किया तो उसके कहता है व्यभिचार। हा देवी काकुभर गदगद्य वाचे जाचे निपत्य भूमि दंड उद्भतार्थी अश्य प्रसादस्य मुबुद्ध कृत्य। ये प्रार्थना कौन करेगा? गांधर्वी के तवगने गणनांग विधे ही। हे राधा रानी, आप कृपा करके आपका गण में मुझे गिनती करो। अरे गिनती करने के तो योग्यता तो होना चाहिए ना, बोलने के लिए तो हजार बार प्रणाम कर देंगे श्लोक बोल के, योग्यता किधर है? राधा रानी अपना संग किसी पुरुष को रखेगा? तो राधा रानी का अगर संग करना है तो स्त्री बनना अति आवश्यक है। अब स्त्री कैसे, पुरुष स्त्री कैसे बनेगा यही बताऊंगा। एक पुरुष स्त्री कैसे बनेगा वो भी बता दूंगा। ते हो गया वरण दशा। इसके बाद आता है स्मरण दशा। कृष्ण सरंग जनस्य प्रेष्टं निजस्वामी हितं तत्त कथा रतस्यासु कुरिजात वासं ब्रजे सदा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजोलोका अनुसारत श्रवणोत्कीर्तनादि वैधो भुक्ति उदितानि तु जनंगानी च तन्नत्र विज्ञानी मनीषिवी। ये भक्ति रसम सिंधु का पूर्व लहरी 150 से 152 नंबर श्लोक है। इसका अनुवाद है, कृष्ण तदीय निज अभीष्ट प्रेष्ठ जन को सदा सर्वदा शरण पूर्वक उनका कथा में सदा रत होकर के ब्रज में निवास करना चाहिए। कृष्ण और उनका प्रेष्ठ जन जो नित्य सिद्ध है, उनका आलोक आलोचना जो कथावार्ता है, इसका सदा चिंतन करते हुए ब्रज में निवास करना चाहिए। अगर शरीर में ब्रजवास करने का अक्षम है तो मन में भी ब्रजवास किया जा सकता है। जो व्यक्ति रागात्तिका भक्ति में जिसका लोभ होता है उनका ब्रजजन का कार्य अनुरूप कार्य करना चाहिए, और बाह्य में साधक रूप में और सिद्ध रूप में अंतर में सेवा करना चाहिए। वैधि भक्ति में जो श्रवण और उच्च कीर्तन का जो भक्तांग विद्यमान है उनको तत्त्वविद व्यक्ति रागानुगा भक्ति में भी ऐसा ही उस अंग का उपयोग है बोल के कहते हैं। तो इसका कुर्जात वासं ब्रजे सदा, इसका शब्द का अर्थ क्या है? कुर्जात वासं ब्रजे सदा, ब्रज में सदा निवास करना चाहिए। ब्रजमंडल, तो ब्रजमंडल अर्थात भगवान का लीला मंडल। श्रीगौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि बास। गौरव प्रेम रसार नवे शेतरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। अब क्या चाहिए आपको? इसी ज्यादा कुछ चाहिए? गौरव प्रेम रसार नवे शेतरंग जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। शिशी पढ़ो और उसका आलोचना करो। क्या चाहिए? हम पढ़ेंगे नहीं, हम आलोचना नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलने वाला है? अगर वहाँ प्रसाद लेना तो वहाँ जाके सेठ जी को बोलना पड़ता है, सेठ जी हम प्रसाद लेना चाहते हैं, तो सेठ जी बोला ठीक है रुको बाद में मिलेगा। वो सेठ जी जाकर आपको प्लेट बना के देगा क्या? गणेशम भाई हैं, उनको सेठ जी बोलता हम लोग। ये सोचो तो सामान्य जिनिस के लिए किसी के पास जाना पड़ता है, फिर उसे मांगना पड़ता है, तो प्राकृतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्णराज कविराज गोस्वामी बहुत दयालु है। गौड़ीय भक्तों में वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णराज कविराज गोस्वामी इतना दयालु है जो सदा सर्वदा आशीर्वाद आचरण धुली। वृंदावन दास ठाकुर का तबे लाथी मारी तार सिर ऊपर है, जो ऐसा काम करेगा उसका सिर में लात मारूंगा। कितना सौभाग्य है उनका चरण धुली। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया दोनु अनासे पावे गिर। वैष्णव का चरण रेणु मांगने से नहीं देता है, वृंदावन ठाकुर इच्छा कर दे रहा है मैं तुम्हारा सिर में लात मारूंगा अगर तुम सुधरोगे नहीं तो। क्या चाहिए? और चैतन्य भागवत से बड़ा ग्रंथ कुछ है? कुछ भी नहीं है दुनिया में। पग पग पर आशीर्वाद है, हर अध्याय में हर लाइन में आशीर्वाद है। जेवा भक्त गोष्ठी सहित तो गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लैब हय। बोलो जिसके लिए हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, भक्ति भक्ति भक्ति। वृंदावन ठाकुर क्या कहते हैं? भक्त गोष्ठी सहित तो गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लैब हय। अगर चैतन्य कथा सुनोगे तो भक्ति लाभ होगा। तो इसके ज्यादा रिसर्च करने का जरूरी क्या है हमें? चुपचाप चैतन्य कथा सुनते जाए, भक्ति तो हो जाएगा। उन्होंने कहा है ना, वृंदावन ठाकुर का तो आशीर्वाद है, उन्होंने कहा चैतन्य कथा सुनेंगे तो भक्ति लाभ होगा। तो ज्यादा झंझट में पड़ने का जरूरी क्या हमारा? हम रात दिन चैतन्य कथा सुनते रहे तो भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये वृंदावन ठाकुर है। और कृष्णदास कबीर गोस्वामी, जेवा केहो नहीं बुझे सुनीते सुनीते सह कि अद्भुत चैतन्य चरित जानिबे रसर रीति कृष्णे उपजीवे प्रीति सुनिले हय बड़ हित। एक कृष्णदास कबीर गोस्वामी कहते हैं, मूर्ख हो जाए पंडित हो, अगर समझ में आता है तो नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर भी आप सुनो। अगर आप समझ नहीं पा रहा है फिर भी आप सुनो, सुनते सुनते आप कृष्ण का प्रीति हो जाएगा और रस का जो रीति है वो भी आप समझ जाओगे। भाई बोलो दोनों आचार्यों ने क्या आशीर्वाद किया। लेकिन हम कितना मूर्ख है, दोनों ग्रंथों में हमारा रुचि ही नहीं है, हम जाना ही नहीं चाहते। हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो पीएचडी है, कुछ भी नहीं है, पीएचडी थोड़ी है, ये तो नर्सरी है, नर्सरी थोड़ी पीएचडी है। इसको पढ़ो तो आगे का कोर्स होगा, इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे का कोर्स नहीं होगा। भक्ति सिद्धांत कल एक लेख पढ़ रहे थे रात को, भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं ये भक्ति का 64 अंग है, 5 अंग सर्वश्रेष्ठ है। इस 5 अंग में 1 अंग सर्वश्रेष्ठ है, नाम संकीर्तन। अगर आप भागवत पढ़ रहे हो नाम संकीर्तन नहीं करो तो आपका कुछ काम का नहीं है। अगर आप ब्रज में निवास कर रहे हो, अगर नाम संकीर्तन नहीं कर रहे हो तो आपका कुछ काम का नहीं है। अगर भगवान का सेवा कर रहे हो, अगर नाम संकीर्तन नहीं कर रहे तो आपका कुछ काम का नहीं है। अगर साधु सेवा कर रहे हो, अगर नाम संकीर्तन नहीं कर रहे तो आपका कुछ काम का नहीं है। लेकिन अगर आप नाम संकीर्तन कर रहे हो तो साधु सेवा कर रहे हो, भागवत सेवा कर रहे हो, ब्रज में निवास कर रहे हो और भगवान का सेवा भी कर रहे हो, नाम संकीर्तन इतना पावरफुल है। क्या रात को पढ़ा, अभी सोचो। और वही नाम संकीर्तन हम करते हैं ना तो ब्रह्मांड को जितना सारा नींद है उस समय आता है, उससे पहले नहीं आएगा। अब टीवी सुबह से चालू करो, रात को 24 घंटा टीवी दोगे, आपका आँख तारका जैसे हो जाएगा, डाउन ही नहीं होगा। लेकिन जैसे माला को लेके पकड़ेंगे ऐसा करके ब्रह्मांड का निद्रा भी कहाँ से नहीं मालूम नहीं है, वो सीधा सिर में आकर मार देता है। तो कितना अनर्थ है चिंता करके देखो, ये अनर्थ का भरा पूरा शरीर नहीं होगा तो नींद नहीं आएगा। नींद इसलिए आता है जो हमें अनर्थ में भरा पड़ा हुआ है, अनलिमिटेड अनर्थ है तो भी तो नींद आता है। इसलिए हमें सोचना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब ये सेवा का जो वर्णन है, तो ब्रजवास शब्द का अर्थ क्या है? निर्जन वास ब्रजवास है। निर्जन किसे कहते हैं? यहाँ कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला रहूँगा तो निर्जन हो जाएगा? नहीं। जब उद्धव ने ब्रज गोपी से आके मिला तो उद्धव ने कहा, मैं निर्जन में आकर के कृष्ण का वाक्य सुनाऊंगा। कितना गोपी था? 365 करोड़। एकाध नहीं, 365 करोड़ गोपी था। तो वहां पर उद्धव आके कृष्ण कथा सुना रहा है तो निर्जन हुआ क्या? लेकिन वो निर्जन है। क्यों निर्जन है? सब समतान है। समतान शब्द का अर्थ क्या है? एक ही भाव विशिष्ट, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, 5 व्यक्ति एक साथ बने तो ऐक्यतन नहीं होगा। और उसमें हरि कथा कुछ अलग प्रकार का ही होगा। लेकिन जिस व्यक्ति जिस रस में है उस व्यक्ति का उस रस का अगर हरि कथा परिवर्तन किया जाए तो अगर करोड़ों व्यक्ति ऐसा एक साथ में रहता है तो उसको कहता है निर्जन। ये निर्जन शब्द का अर्थ है। तो ये जो निर्जन, तो संख्या हरिनाम करते करते अष्टकालीय जो लीला है उनका शरण कीर्तन करना चाहिए। टाइम तो हो गया, मैं खाली नाम संकीर्तन थोड़ा बोल देता हूँ, उसके बाद आगे बंद हो जाएगा। मन को स्थिर कैसे करेंगे, मन को स्थिर कैसे करेंगे, मन तो भागते रहता है। जब चित्त में रागानुग भक्ति का ऊपर लोभ होगा तभी मन स्थिर होगा। राग शब्द का अर्थ क्या है? आकर्षण। जब किसी वस्तु में किसी व्यक्ति के विशेष का किस प्रकार आकर्षण होगा तो सदा सर्वदा उसी वस्तु विशेष पर उसका चिंता रहेगा, कब उस चीज को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो अभिष्टमयी चित्त है इसको कहते हैं राग। यही राग जो अप्राकृत नाम में बा भगवान में बा ब्रजवास में होगा तब इसको रागानुग कहते हैं। अगर इसमें उत्पात होता है, उत्पात मतलब चित्त चांचल्य, तो क्रम अवलंबन करना अति आवश्यक है। क्रम अवलंबन करने से जब चित्त स्थिर होता है तभी इस सब उत्पात और नहीं होगा। तो क्रम क्या है? रोज निर्जन में विषय उत्पात ताग पूर्वक, विषय बोल के गृहस्थ के लिए नहीं, ब्रह्मचारी के लिए भी है, सन्यासी के लिए भी विषय है, ब्रह्मचारी छोड़ो सन्यासी के लिए भी विषय है। विषय उत्पत्ति जो विषय जिससे उत्पन्न होता है उसको ताग करके, विषय किसमें उत्पन्न होता है? बराबर चल नहीं रहा है मंदिर, मेंटेन बराबर नहीं हो रहा है, कोई उठपटांग काम कर रहा है, तो चित्त में खूब होगा, चित्त खूब होगा तो चित्त में चांचल्य होगा। एक सन्यासी आकर टेम्पल प्रेसिडेंट है, चलो सन्यासी को उदाहरण दे रहा हूँ, सन्यासी टेम्पल प्रेसिडेंट है, जैसे हम जब थे तो इन्होंने था टेम्पल प्रेसिडेंट अपना क्या नाम भूल गया, जो बीबीटी में इंचार्ज था बीबीटी का, नर्मदा महाराज। तो नर्मदा महाराज टेम्पल प्रेसिडेंट है, देवकनंदन प्रभु रसराज ब्रजहरी ये सब प्रभु लोग जाके एकादशी का दिन मीटिंग, महाराज मीटिंग करने का, तुम लोग को शर्म नहीं आता है आज एकादशी एकादशी मीटिंग 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 हर दिन मीटिंग करते, भजन कब करोगे? डांट के लोग को सबको भगा दिया, जाओ भजन करो कल देखा जाएगा। चित्त चांचल्य होता है कि नहीं होता है? अब बोले सन्यासी का चित्त चांचल्य क्यों है, हुआ कि नहीं हुआ? चित्त चांचल्य एक नहीं, संसारी लोग को चित्त चांचल्य ऐसा नहीं है, सबको चित्त चांचल्य होता है। तो इस चित्त चांचल्य को ताग करके कुछ समय तक सब कुछ मनोवासन जी बोलते ना, वो सवासन आता है, सवासन अगर ज़्यादा टेंशन है तो सवासन हो जाओ, ऐसा करके सो के हाथ पा कर चिंतन फिर होकर सो जाओ, पाँच मिनट सो जाओ तो आपका दिन भर का थकान चला जाएगा, ये सवासन है। तो इसी प्रकार समस्त चिंता को दूरीभूत करके निर्जन में माला लेके बैठो, और माला लेके बैठ करके थोड़ा टाइम तक कुछ समय तक माला करो भाव का साथ। अरे भाव का साथ माला कैसे होगा? भाव किसे कहते हैं? उल्लास। अब उल्लास कम कैसे समझाएंगे? भगवान का नाम लेना हमारे लिए कल्याणकारी वस्तु, इस उल्लास का साथ नाम लो, और इस उल्लास का साथ जब नाम लेंगे तब धीरे धीरे उसको समय को बढ़ाओ। आज चार माला किया, चार माला में 15 दिन 20 दिन जो भी गुजारो, फिर 8 माला करो, फिर 16-12 करो, 16 माला रोज जप करो, इसके लिए माना नहीं है, लेकिन ये जो भाव का साथ नाम इसको करने के लिए चार 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 का स्टेज करके जाओ। और ऐसा जब 4 माला देखो विषय उत्पाद रहित होकर नाम हो रहा है, नाम में किसी प्रकार व्यवधान नहीं आ रहा है, तो समझ लेना 4 माला में आप सिद्धि लाभ किया, किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं है, कोई चित्त चांचल्य नहीं है, चुपचाप नाम हो रहा है, एकदम रेगुलर हिसाब से चल रहा है, नाम भी चल रहा है, चित्त भी चल रहा है, काठी भी बराबर है, अंगुली भी बराबर है। कोई भी क्या क्या होता है, जो आधा काठी में हाथ रहता है, आधा माला बोलने के से पहले काठी आगरा चला जाता है, कभी कभी देखो मार्क करके देखो आप, हम हमारा मैं आपका कल्याण कर नहीं पाऊंगा, आपका कल्याण आपको खुद को ही करना पड़ेगा, ना कोई हाथ पकड़ के करेगा। तो हमारा कल्याण करने के लिए हमारे कोई डॉक्टर बनना पड़ेगा, हमें पेशेंट बनना पड़ेगा, हमको खुद डॉक्टर और खुद रोगी अगर बनेंगे तो भी हम अपना आपको उद्धार कर सकते हैं, दूसरा डॉक्टर बनने वाला होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार विषय उत्पाद ताक करके जो 4 माला में आपको स्टेज हो गया तो उसके बाद उसको 8 में कर दो, इसको इस प्रकार करके इसको बढ़ाओ, और इस प्रकार जब बढ़ाएंगे तब अद्भुत भाव उत्पन्न होगा, और जब अद्भुत भाव उत्पन्न होगा तब उत्पाद का संभावना नहीं रहेगा। और इस प्रकार भाव का साथ जब नाम शरण करेंगे उसमें ममता को योग करो, जो ममता है प्रीति, उसमें प्रीति का योग करो। अभी हम क्या कर रहे थे, श्रद्धापूर्वक नाम कर रहे थे, प्रीति नहीं था, लेकिन हमें श्रद्धा का साथ प्रीति का युक्त करके नाम करना पड़ेगा। जब श्रद्धापूर्वक प्रीति का साथ नाम करेंगे तब उसका नाम है विश्रम्भ, और उस रूप में जब हम नाम करेंगे तो भावापन दशा आएगा, और इस भावापन दशा का नाम है जो अभी वर्णन किया गया ना, अही, इसके लिए स्टेज है ये, बाकी बहुत रह गया, घोड़े का कांटा भी न हो गया। तो ये जो हरिकथा है, इस प्रकार जब शास्त्र युक्ति दृढ़, शास्त्र युक्ति दृढ़ श्रद्धा जा, शास्त्र युक्ति सुनपुन दृढ़ श्रद्धा जा, उत्तम अधिकारी से तरे संसार। जो शास्त्र युक्ति में सुनपुन होगा, जिनका दृढ़ श्रद्धा होगा, शास्त्र युक्ति में बहुत सारे लोग दृढ़ श्रद्धा है, सुनिपुण है, लेकिन श्रद्धा दृढ़ नहीं है, भी है आपका गुनावली बहुत लोगों का है। शास्त्र आप कहाँ से कुछ बोलो थोड़ी बोल देगा, लेकिन दृढ़ श्रद्धा है ही नहीं है, तो उनको नहीं हो सकता है। शास्त्र में श्रद्धा भी होना पड़ेगा, निपुण होना पड़ेगा, दृढ़ श्रद्धा भी होना पड़ेगा। दृढ़ श्रद्धा किस में होना पड़ेगा, आचरण देख के आप लोग समझ सकते हो, हम इतना उदाहरण देख के किसको किसको समझाएंगे, ये सब देखो, आँख दिया है, दर्शन करने का क्षमता है, विचार करने का योग्यता है, अपना विचार करो, दूसरा का विचार मत करो, दूसरा का गुण और दोष देखना सबसे बड़ा दोष है। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद उद्धव गीता भगवान कहते हैं गुण और दोष से परे हो जाओ। बोला गुण दोष क्या है, दूसरा का गुण देखना भी दोष है, और दूसरा का दोष देखना दोष तो है ही है, तो दूसरा का गुण भी नहीं देखो और दूसरा का दोष भी मत देखो, वो दोनों से परे रहो, तभी होगा। चलो हरे कृष्ण।